और फिर आगे उम्मत है मुस्लिमा पे आ जाए। अब अगर मैं आपको सिर्फ एक एक आयत भी दे दूँ ना, सूरह आले इमरान पे चलिए, आयत 110, कुन तुम खैर उम्मत नुखरिजत लिन्नास तामरू न बिल मारूफ व तनहौ न निल मुनकर व तुमिनू न बिल्लाह। तुम वो उम्मत हो जो ईमान लाती हो अल्लाह पे, तुम बेहतरीन उम्मत हो, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर होता ही ईमान के बाद है। आगे चलिए तो सूरत निसा 162, ला कहने रास खू न फिल इल्मी मिनहुम वल मोमिनू न यूमिनू न बीमा उन जिला इलै, यानी इल्म में रसूख बढ़ता जाएगा, आपका इल्म पहले से ज्यादा होता जाएगा तो आपका ईमान भी ज्यादा होना चाहिए। हम इल्म में बढ़ते जाए ना तो हमारी कुछ और चीजें तो बढ़ जाती हैं, अकड़ बढ़ जाती है, गर्दन में सरिया आने लगता है, आवाज में जरा सख्ती और टोन आने लगती है। अल्लाह कहता है ईमान जब बढ़ेगा ना तो तुम्हारे ये सारे मामले और अच्छे होने चाहिए, जिसका जिक्र है आयत में आगे। और इसी तरह फिर कुरान से आप ढूंढते रहिएगा। सूरत अल अराफ की आयत 25 पे अगर आप चले जाएं तो बदउनवानिया मामलात की, नाप तोल की कमी, लोगों को कुछ देना और लेना कुछ, कमी करके देना, डंडी मारना, कौम शुएब का जिक्र है। माली मामलात की इसलाह हो नहीं सकती जब तक ईमान ना हो, क्योंकि अलराफ 25, काल या कौम बुदुल्लाहमा लकुमिन इलाखिन गैरु, और एंड पे क्या आता है, इन कुंतुम मोमिनीन, ये तुम्हारे हक में बहुत अच्छा है अगर तुम मोमिन हो, कि अगर तुम इन बातों पे अमल कर लो। क्या पता चलता है कि जब हम उम्मते मुस्लिमा के लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, अब दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और इसलाह के लिए उतारा गया, अगर इनमें से जो लोग पुख्ता इल्म वाले हैं, और अगर आप दुनिया को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से निकालना चाहते हैं, तो अलराफ 85 में ईमान ईमान और ईमान, और थोड़ा सा आगे आ जाते हैं आप तो सूरत अल बकरा खुलती है, आयत 124, व इज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुम फ़मिन्हुम मन यकूल व अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहुम ईमानम वहुम यस्तबशिरून। इसके तर्जमे पे गौर कीजिएगा, जब कोई नई सूरत नाजिल होती है तो इनमें से बास लोग मजाक के तौर पर मुसलमानों से पूछते हैं, कहो तुम में से किसके ईमान में इससे इजाफा हुआ। इसका जवाब यह है कि जो लोग ईमान लाए इनके ईमान में तो वाकई हर नाजिल होने वाली सूरत ने इजाफा किया है और वो इससे दिलशाद हैं। 18वें पारे का तो आगाज ही होता है कद अफलहल मोमिनून से, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन लग़्विल मौरिदून लिज़्ज़कात फ़ाइलून लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून ली अमानातिहिम वाहदिहिम राउन और सलावातिहिम यो हाफिज़ून। ये सारी ईमान वालों की खूबियाँ। तो लफ्ज़ ईमान बहुत बड़ा है, हम इसको इतनी जल्दी नहीं पूरा कर सकते, लेकिन चूंकि आज आपसे वादा है ईमान की शाखों पे बात करने का, तो हम ईमान की शाखों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आपको मुझे बेहतरीन तरीके से इस मौजू को समझने की तौफीक देगा और मोहलत देगा। बात हुई शुरू से ही कि ईमान की मिसाल एक दरख्त की है, और जब ईमान की मिसाल दरख्त की है तो दरख्त में क्या होती हैं, शाखें होती हैं, और जितनी शाखें होंगी ब्रांचेस उतना एक्सपेंड करना ज्यादा होगा ना। बिल्कुल इसी तरह से आपने जहन में ये चीज रख लीजिएगा कि ईमान एक दरख्त है। ईमान जब तन्हा तन्हा सिर्फ एक लफ्ज लिख दिया जाए ना, ईमान लाओ, तो आपके जहन में सिर्फ वो ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना ही नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आपके जहन में ये जो आज अभी बताने लगी हूँ ये पूरी लिस्ट होगी। एक दरख्त के तसव्वुर के साथ लाइए, टुंड मुंड सारे पत्ते कटा, सारी टहनियाँ कटा हुआ पौधा दरख्त नहीं होता, मैं इस मौजू को समझाने के लिए आपको एक छोटी सी मिसाल पहले देती हूँ। आप अपने तसव्वुर में, बल्कि अपने नोट्स में एक दरख्त बनाइए। नीचे जड़ें और ऊपर उसके, जो कुछ भी दरख्त में होता है आप सबको पता ही है। अब इस दरख्त को अपने जहन में रखते हुए आप क्या करें? शाखें हैं, पत्ते हैं। अब जो नीचे जड़ें होती हैं वो तो छुपी होती हैं, कोई शीशे में नहीं दरख्त उगते, आप कोई क्रिस्टल के अंदर दरख्त नहीं उगा सकते। बीज को जमीन के अंदर थोड़े दिन दबाना पड़ता है। ये एक अलग मौजू है कि ईमान का बीज जितना गहरा अंदर अपना असर दिखाता है उतना ही मजबूत दरख्त होता है। और कहते हैं जितनी दरख्त की शाखें होती हैं ना, उतनी दूर तक उसका साया जाता है। नीचे अंदर जड़ें भी उतनी फैल रही होती हैं, ऊपर से झाड़ भी उतना होता है और शेडो भी उसका जितना भी होता है। अब कोई एक शख्स आए, आपके बनाए हुए इस दरख्त के पत्ते झाड़ दे। अब एक नीचे एक दरख्त बनाइए लेकिन उसके ऊपर से पत्ते उतार दे। कोई आया बकरियां चराने वाला, उसने अपने असा से मूसा की तरह पत्ते झाड़ दिए। अब कोई दूसरा शख्स गुजरे और पूछे ये क्या? वो कहेगा दरख्त है, हाँ इस पे पत्ते नहीं है। अब एक तीसरा इमेज बनाइए प्लीज। पत्तों के पीछे जो छोटी छोटी डंडियां होती है ना, ब्रांच, वो भी काट दे। यानी इर्द गिर्द की सारी चीजें काट दे, सिर्फ बीच में एक सीधा एक तना रह जाए। अब किसी से पूछिए बताओ भाई ये क्या है? वो क्या कहेगा? लगता है ये कोई दरख्त था, पर अब ना इसका फल है। पहली तस्वीर में आप एक फल की भी बना लें, ना इसमें फल है ना इसमें पत्ते हैं, और ये छोटी छोटी टहनियां हैं बस, और नीचे तना है। और एक आखिरी शख्स आकर वो सारा कुछ उतार के वो जो तना है ना उसको भी पॉलिश कर दे, उसकी छाल को उधेड़े, उस पर खूबसूरत सा पेंट करे, उस पर कुछ भी लगा दे। और अब कोई अजनबी शख्स वहां से आए तो आप पूछिए ये क्या है? क्या कहेगा? एक पिलर है, एक पोल है, शायद किसी ने यहाँ कभी को बिजली के तारें डालनी थी। अब कोई उस पॉलिश्ड चमकी दमकी और उस पर कोई आकर मोती सारे लगा दे, उस पर कोई पत्तियां फल फूल डाल दे, क्या वो दरख्त रहेगा? एक ऐसा वक्त भी आएगा, और आप उस तने को जितना डेकोरेट करते जाएं, उस पर टाइलें लगा दें, कोई उसके ऊपर आकर संगमरमर लगा दे, कोई उस पर आकर कोई खूबसूरत सा वॉलपेपर लगा दे, अब वो दरख्त नहीं रहेगा। बस आज हम मुसलमान अगर इस मौजू को समझें, कुछ लोगों ने सबसे पहले फल झाड़ दिए, कुछ बाद वाले आए तो उन्होंने पत्ते झाड़ दिए, फिर कुछ और आए तो उन्होंने टहनियां भी काट दी, और कुछ ने तो सिर्फ फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम का नाम लेकर का ये है इस्लाम। दैट इज नॉट रियल इस्लाम, दैट वॉज इस्लाम। आज जब हम इस्लाम की बात करते हैं, और इस मिसाल को हमने बीसियों से जायद दफा किया हुआ है, आलम तरह कई फदारा बल्ला वाली आयतों में, आपने इस बिलुल जन्ना में पढ़ा, आपने नुरुला नूर में पढ़ा, आगे आप जाके इसको हर कोर्स में पढ़ते हैं, हर साल के दारा कुरान में ये मिसाल आती है कि ट्री ऑफ इस्लाम, इस्लाम ए टू जी पूरा इस्लाम है। ये पंपी ग्लैमरी दीन, किसी को पत्ते नहीं अच्छे लगते वो झाड़ दिए, किसी को फ्रूट अच्छा नहीं लगता वो झाड़ दे, कोई आके टहनियां भी काट दे, ये टुंड मुंड किस्म का इस्लाम इज नॉट अ रियल इस्लाम। अल्लाह के दुदखलो फिस सिल्मी काफा, रूट टू फ्रूट। हम अक्सर बात करते हैं ना, ये वही बात है। जितना ज्यादा आप इस चीज पे फोकस करते जाएंगे, आपका शरह सदर होता जाएगा कि आपने क्या करना है। तो ईमान की बहुत ज्यादा शाखें हैं, इस बात की दलील है कि ईमान जब तनहा जिक्र हो तो पूरे दीन इस्लाम को शामिल होगा, यानी जहां लफ्ज ईमान आएगा उसे मुराद इस्लाम होगा। और अल्लाह के नबी सल्लम ने ये बातें हमें दी और हम इसको बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। और ये भी याद रखिए, जितना गुड़ उतना मीठा। सूरत अनकबूत की आयत 69 में आता है, वल्लजीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और वो लोग जो हमारी खातिर मुजाहिदा करेंगे हम इन्हें अपने रास्ते दिखाएंगे। आप मुजाहिदे की नीयत से बैठे हैं कि हम अपने बारे में कुछ मजीद सोचें, कुछ और समझें, कुछ और बात आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत सी रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए हम तक पहुँची, जिनका असल नाम अब्दुर्रहमान बिन सखर था, कुनियत अबू हुरैरा थी। فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی شاخیں 70 سے کچھ اوپر ہیں، یعنی مور دین 70. ان میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ زبان اور دل سے اس بات کا اقرار اور اعتراف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے کم درجے کی شاخ کسی تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے. نیز شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے. یعنی اس حدیث میں آپ کو بدع و سبعون کی بات ہوئی ہے، 70 سے کچھ زائد. اسی طرح سے ایک اور روایت صحیح مسلم ہی کی ہے، 152 نمبر حدیث ہے، ابو ہریرہ ہی راوی ہیں. اس میں ایمان کی 70 سے کئی یا 60 سے کئی شاخوں کا بھی ذکر ہے، یعنی مور دین 60 اور مور دین 70. لیکن سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادنا سب سے چھوٹی آخری کیا ہے کہ کہیں تکلیف دہ چیز پڑی ہے، آپ گرتے گرتے بچے، یا آپ کے کپڑوں کو وہ کانٹوں والی شاخ لگ گئی تو آپ پیچھے مڑ کر اس شاخ کو اٹھا کر سائٹ پہ کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ کسی اور کے رستے پہ نہ یہ رہے. تو یہ بھی ایمان کی نشانی، یعنی مومن اتنا بینیفیشیل ہوتا ہے کہ جس چیز سے خود کو بچاتا ہے اس سے دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے. اور حیا ایمان کی شاخ ہے. کیا پتہ چلا کہ حیا کے بغیر ایمان ایمان نہیں ہوتا. آج اگر کپڑے نہیں، کپڑوں میں کمی ایمان میں کمی کا ثبوت ہے، حیا میں کمی ایمان میں کمی کا ثبوت ہے، باتوں میں گندگی ایمان میں کمی کا ثبوت ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے دنیا کو دکھانا ایمان میں کمی کا ثبوت ہے. اسی طرح سے یہ ٹاپک آپ کو صحیح بخاری میں کتاب الایمان حدیث نمبر 9 اور صحیح مسلم میں 153 میں بھی ملتا ہے. ان ساری روایتوں کو جب جمع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایمان کا یہ درخت بنتا ہے. نیچے جڑے ہیں عقیدے کی، تنا ہے عبادات کا، ٹیمپ از ورشپ، موڈ آف ورشپ نماز روزہ حج زکات. اوپر برانچز لکھیں گے تو یہ معاملات ہیں، حقوق العباد کہہ لیں، اور یہ جو پتے ہیں نا یہ آپ کا اخلاق ہے، اور یہ جو برانچز ڈفرنٹ ہیں نا یہ سب عمل صالح ہیں. تو امام ابو بکر، جن کا نام امام بحقی ہے، بڑی معروف تفسیر ہے تفسیر بحقی، انہوں نے ایمان کی 77 برانچز بیان کیے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ 77 طریقے سے ایمان کو ثابت کرو، ایمان کی باتیں کرو اور ایمان کے ساتھ لے کر چلو، پھر بات سمجھ آتی ہے. اور اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں اور فرشتوں کے بارے میں اچھا اعتقاد اور حسن ظن رکھنا، اور ان سب کو برحق سمجھنا، سچے تھے یہ سچ ہے، اور آخرت کا عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد قبر میں برے اور گناہگار لوگوں پر اللہ کا عذاب ہوگا اور اچھے اور نیک لوگوں پر اس کا انعام اور اکرام ہوتا ہے. یہ ہے ایمان کی ایک مختصر سی ڈیفینیشن. بعض جگہ روایت میں اس کو شعبہ، تو عربی میں شاخ کو شعبہ بھی کہا گیا، شعبہ. اردو میں نہیں بولتے شعبہ تدریس، وہ بھی برانچ ہی ہوتی ہے. جو آپ انگلش میں لفظ بولتے ہیں نا برانچ، عرب ملکوں میں جائیں گے تو وہاں شعبہ لکھا ہوگا، برانچز مین شعبے. تو اس میں سے سب سے بڑا شعبہ پتا کیا ہے؟ کہ بندے کا دل اللہ سے اٹک جائے. ابھی صبح میں جو سیشن دیا SJ 19 میں وہ یہی تھا. امام شافعی سے کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے پیارا عمل اللہ کو کیا لگتا ہے، واٹ از دا موسٹ بلوڈ تھنگ ٹو اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہا تھا کہ تیرا دل ایسا ہو جائے کہ اس میں کوئی تمنا نہ رہے دنیا کی آخرت کی، صرف اللہ اور اللہ کی ذات. تو لکھیے محبت اور دشمنی صرف اللہ کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت، اور آپ کی عظمت اور برتری، اور آپ کی تعلیمات کو پروان دینا، نبی کے مشن کو لے کر چلنا اور پھیلانا، اور اسی طرح اس دنیا میں یا اس محبت میں دنیا کی کسی چیز اور کسی بھی رشتے کی وہ اہمیت نہ رہے कि अल्लाह को नाराज़ करके बंदा बंदे को खुश कर दे। और जब अल्लाह रसूल की मोहब्बत की बात करें तो उसमें इत्तबाए शरीयत, जिसको आप इत्तबाए सुन्ना भी कह सकते हैं। तभी तक की बात का खुलासा लेकर आगे लिस्ट दूंगी आपको कि ईमान एक जिंदा और जावेद हकीकत है। ईमान घटता भी है और बढ़ता भी है। और जब आप ईमान की वो शाखें जो इमाम अबू बकर बहकी ने बयान की हैं, मैं आपको अब तरतीब से लिखाऊंगी, कुछ छूट जाए तो कोई बात नहीं, बाद में लिख लीजिएगा। यहाँ ये भी याद रखिए, ऊपर से शुरू करके उन्होंने जो दिए ना, तो फर्स्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे जड़ है। आप बल्कि इसको यूं लिखिए, मैं जिस तरतीब से बोल रही हूँ ना, और ये उन्होंने लिखी है, मैं उसी से बोलूंगी, ये जड़ों से शुरू होता है। हम दरख्त ऊपर से बनाना शुरू करते हैं। बच्चों को आप कहना दरख्त बनाए तो वो जल्दी से वो डंडियां डुंडियां डाल के कहेंगे पत्ते बना, ये दरख्त है, तो नीचे जड़ कटा हुआ है। ये जो ईमान का दरख्त है ना, ये नीचे से शुरू होगा। तो मैं विदाउट पॉज और नंबर बोले गो थ्रू करने लगी हूँ लिस्ट को। ये इमाम बहकी की ही लिस्ट है, फिर इसके ऊपर एंड पे जो वक्त बच जाएगा उस पर हम बात करेंगे। नंबर वन, अल्लाह अज़्ज़ व जल पर ईमान। अब नंबर टू, सिर्फ ये शुरू के एक दो आपको बता रही हूँ, आप तरतीब में वन टू लिख लें या लेकिन गैप होना चाहिए, हर लफ्ज़ एक शाख है। अम्बिया और रसुल पर ईमान, यानी सिर्फ नबी सल्लम नहीं बाकी अम्बिया भी। नेक्स्ट, फरिश्तों पर ईमान। फिर नेक्स्ट, कुरान करीम और तमाम आसमानी किताबों पर ईमान। नंबर फाइव, तकदीर पर ईमान, के भली और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है। बिलकद्र खैरी ही व शर्र ही मिन अल्लाह। फिर छठा है, यौम आखरत पर ईमान। सेवन्थ, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान। नेक्स्ट, लोगों के अपनी कब्रों से उठाए जाने के बाद खड़े किए जाने का ईमान। अल्लाह अकबर, मरने के बाद उठना है पर उठ के खड़ा किया जाएगा, मौकिफ कहते हैं इसको, यानी लोगों के अपनी कब्रों से उठाए जाने के बाद खड़ा किए जाने पर ईमान। जरा सोचिए, यौम यकूमुन्नास लिरब्बिल आलमीन, क्याम होगा। एक क्याम नमाज में आप करते हैं, तहज्जुद में करें या फर्ज में करें, एक क्याम वकूफ़ अरफा की सूरत में आप हज पे करते हैं, और एक क्याम होगा जब मौकिफ होगा वहाँ अल्लाह के सामने खड़ा होने की जगह। फिर नेक्स्ट, इस बात पर ईमान कि मोमिनों का ठिकाना जन्नत और काफिरों का ठिकाना जहन्नम है। नंबर टेन, अल्लाह अज्ज व जल की मोहब्बत के वाजिब होने पर ईमान। सुभान अल्लाह, आपका ईमान होना चाहिए कि अल्लाह की मोहब्बत कुछ कामों से वाजिब हो जाती है। फिर अल्लाह अज्ज व जल से खौफ खाने के वाजिब होने पर ईमान। नेक्स्ट, अल्लाह अज्ज व जल से उम्मीद रखने के वजूब पर ईमान, वजूब यानी वाजिब। फिर नेक्स्ट, अल्लाह अज्ज व जल से उम्मीद रखने के वजूब पर ईमान। फिर नेक्स्ट, अल्लाह ताला पर एतमाद और तवक्कुल करने के वाजिब होने पर ईमान, यानी ये सब वाजिब है आपके और मेरे ऊपर। फिर नेक्स्ट क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के वाजिब होने पर ईमान। अब देखिए, 13 ब्रांचेस अल्लाह ताला से मुतल्लिक थी अमूमन, और आप नबी सल्लम से मोहब्बत के तकाजों में क्या चीज़ आ गई, नबी सल्लम से मोहब्बत वाजिब है, इस पर ईमान रखिए। नेक्स्ट, गलुव किए बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौकीर और एहतराम के वाजिब होने पर ईमान। नेक्स्ट, आदमी का अपने दीन से इस कदर मोहब्बत करना कि जहन्नुम में डाला जाना इनके नज़दीक या उसके नज़दीक कुफर करने से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो। हदीस आपको याद आनी चाहिए, ज़ाक़ताम ईमान। और ये सारी जो बातें लिखी अपने से नहीं लिखी, उन्होंने हदीसों से एक्सट्रैक्ट की है। नेक्स्ट, तलब इल्म, यानी दलाइल की रोशनी में अल्लाह, उसके दीन और उसके नबी की मार्फत का हसूल, ये भी ईमान की एक शाख है। तो इसीलिए तो इल्म जन्नत के रास्तों को आसान कर देता है। नेक्स्ट, इल्म की नशरो इशात और लोगों को इसकी तालीम देना। देखिए, आउट ऑफ 77 इट कम्स ऑन 18th नंबर। अगर आप किसी भी तरफ से इल्म के नशरो इशात में, और आप हैं, आप सब नूरुल नूर क्यों सीख रहे हैं, ये क्यों सीख रहे हैं आप सारे? घर जाके सो जाना नूरुल नूर करके। नहीं, आप ट्रेन हो रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, ये टीचर ट्रेनिंग है। आपने इसके बाद जाके काम करना है। अभी भी आपको साथ ही साथ काम दे दिए जाएंगे और आप करेंगे और सोते रह जाएंगे। कुरान पढ़ने वाले सो जाएंगे ना तो उम्मत का नसीब सो जाता है। जैसे एक डॉक्टर बनने के बाद वो अगर काम ना करे तो एक सीट जाया कर जाता है ना। अब कहते क्या जरूरत है, इतने लोगों को और दाखिला मिल सकता था, तुम्हारी वजह से उनको नहीं मिला। तो अपने इस इल्म को संभाल के रखिए। हाँ, आपको काम दिए जाएंगे, खुद से कोई काम करेंगे तो वो वही बात है कि खाली शाख कटी पड़ी नीचे पड़ी है, फिर फल कहाँ लगेगा। ये जो आज हमें शौक लग जाता है ना थोड़ा सा पढ़ के कि बस ये अब तो हम काबिल हो गए हैं, तो नीम अकीम वाली मिसाल याद रखें। सीखिए, आप सबको नसीहत करूंगी, आप नुरला नूर हैं, कल आप ही ने आगे बढ़कर अगले सेशंस में आना है। आपको पूरा इंस्टीट्यूट की तरफ से गाइड किया जाएगा, आप में से किसी एक को जाया नहीं किया जाएगा, और आपने ही आगे सीखना है और आपने ही सिखाना है। अब मैं जब नए कोर्सेज में जाती हूँ तो जिनको मैं एज एडमिन देखती हूँ, मुझे याद आ जाता है कि तो कभी स्टूडेंट्स थे, तो मुझे खुशी होती है। सीखिए सीखिए, अभी कुछ नहीं आपने और करना, और करेंगे ना तो ये छोड़ देंगे, और छूट जाता है उन लोगों का जो चार चीजें शुरू इकट्ठी करते हैं, एंड पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ छोड़ देते हैं। खामोशी से जो कहा जा रहा है वो करें। और आपको सबको यहाँ बैठकर, सब बाहर वालों को भी बात पहुंच रही है, अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूँ कि आप वो बुनियादे बनेंगे जिसमें यहाँ अल्लाह ने काम लेना है। कच्ची बनना है तो बन जाइए, तुड़कती भुड़कती लुढ़कती इधर से उधर घूमती भी बनना है, और सोई सोई ढीली ढाली बनना, जो मर्जी बन जाए, आपका काम है। वो कहते हैं कि बीज डालना काम था, हम सब अपना काम करके चले जाएंगे दुनिया से, बारी बारी हम सब हिस्से डाल रहे हैं। मेरी ख्वाहिशात अगर कोई मुझसे पूछे, और स्पेशली जब मैं आपको इस बिल्डिंग में आकर देखती हूँ, तो मेरा दिल कटता है, यकीन करें। कल भी बच्चों की क्लास में मैं आई थी थोड़ी देर के लिए, मेरा दिल कटता है। मैं कहती हूँ अल्लाह ये बड़े हो रहे हैं, इनको बड़े कपड़े दे। किसी को छोटे कपड़ों में देखें तो तंग घुटन होती है ना, आप कहते हैं बच्चों के कपड़े लेने हैं, मैंने बड़ा हो गया अब इसके सर्दियों के लेने हैं। तो आप लोग कितनी को कोशिश कर रहे हैं मुझे नहीं पता, आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई बिल्डिंग दिखेगी तो लेंगे, तो वो पहले पूछेंगे कि आपने किया क्या जमा। लोग आपकी मेरी जज्बाती बातों पर थोड़ी आगे आएंगे, तो अपने लिए खुद फैसले कीजिए। कोई हर वक्त आपके सर पर नहीं रहेगा, आपको जो ख्वाब देखना है देखिए, अल्लाह ताबीर कर देता है, ये मेरा ईमान है। छोटे ख्वाब की छोटी ताबीर, बड़े ख्वाब की बड़ी ताबीर, बड़ी कोशिशों की बड़ी। आपने जितना ग्रो करना है ये आपके दिन है। ये 19वें पारे से आगे चलते जाइए, और फिर आपको देख रहे हैं हर साल नए नए लोग नए कोर्सेज में आते जा रहे हैं। आप पायनियर बन के दुनिया से जाइए, कब्रों में खुशबू आएगी। चाहते हैं कब्र की मट्टी में खुशबू आए तो ये इल्म की नशरो इशात पे रहें। ये तो चूंकि पैशन है ना, इसलिए इस पर इतना वक्त लगा दिए। ये नबियों का काम है। आप पतीले पकाते हैं, या आप बच्चे पालते हैं, या आप यहाँ सफाइयाँ करते हैं, या आप रिसेप्शन पे बैठते हैं, या यहाँ मेरी तरह बैठ के पढ़ते हैं, हम सब बराबर हैं। हमें से कोई आला और अरफा नहीं है, नतना है, कोई किसी घुटन का शिकार ना हो। हाँ, सिर्फ वो महरूम है जो किसी वजह से, और अल्लाह आजमाने के लिए कोई वजह डालता है, आप ठंडे होकर बैठ जाते हैं। अल्लाह ने आपको आजमाने के लिए किसी मुश्किल में डाला था, वो खुशियों की सूरत में भी होती है, वो गमों की सूरत में होती है। डाली कट के गिर जाती है ना, तो वो फिर कंकर या लोगों के पहुंच जाती है, या फिर एक दिन आएगा वो कचरा लेने वाला सारी टहनियों को पकड़ के आग लगा देगा। सिर्फ पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहारक, ये है ईमान की शाखें। 77 शाखें जमीन पे गिरी पड़ी हो किसी काम की नहीं है, कपड़े फाड़ेंगी, फर्नीचर भी वो तने का ही बनता है। फॉर्म होंगे, स्ट्रांग होंगे तो कट भी जाएंगे तो कुछ अल्लाह काम ले लेगा। पहले लुढ़के फुड़के थे तो जब कट के गिरे तो वो तो पानी भी ना नीचे से मिला। पौधे को सोचिए ना, जमीन आपको नमकियात देती, पानी देती, सपोर्ट देती है ना। और वो एक दरख्त की तस्वीर देखी थी मैंने कि दरख्त नीचे कटा हुआ गिरा है, लेकिन वो तने के अंदर कुछ रूट्स पहुंची होती हैं, ये होते हैं पौधे, हमने बॉटनी में पढ़ा है। तो जड़ किसी ने काट दी तो तना गिर गया, तो पड़ा रहा पड़ा रहा कुछ अरसा, पानी बारिश आती रही नीचे, तो वो तने के अंदर से जड़ें निकली और उसके ऊपर 7-8 तने लगे हुए हैं। तो उसके नीचे लिखा था, लोगों ने गिरा तो मुझे कब कही दिया है, लेकिन मेरे अंदर दर्द था तो मैं फिर रुक गया। ये कल का टॉपिक था हमारा, वल्लाहु ग़ालिबुन अला अमरी। तो बहरहाल आगे चलिए, लिस्ट पूरी करा दूं, नेक्स्ट पे चलिए। कुरान करीम सीख कर, दूसरों को सिखा कर, इसके हदूदो अहकाम की हिफाजत करके, इसके हलाल और हराम की मार्फत हासिल करके इसके मुत्तबेईन यानी इत्तबा करने वालों की इज्जतो तकरीम करके नीस यानी साइड नोट इसको हेफ्स करके इसकी ताजीम करना। अल्लाह अकबर। देखिए मेरे पास 77 नामों की लिस्ट है ना, ये नंबर जो मेरे सामने लिखा हुआ है 19 है, ये सबसे लंबा है। ये मैंने एक पढ़ा, ये कोई इसको 6-7 ना कर दीजिएगा। एक चीज कुरान ने करम सीख कर दूसरों को सिखा कर इसके हदूद और अहकाम की हिफाजत करके इसके हलाल और हराम की मार्फत हासिल करके इसके मुत्तबेईन की इज्जत व तकरीम करके नीज इसको हिफ्ज करके इसकी ताजीम करना, ये 19वीं शाख है, ब्रांच है ईमान की। तो फिर आपके ईमान की गवाही है ये, अगर आप इसमें कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अल्लाह में वो पतला सा तार ही बना ले के जो इंजन को बैटरी से जोड़ता है और गाड़ी चल पड़ती है। नेक्स्ट लीजिए, तहारत व पाकी और वुजू की पाबंदी करना। नेक्स्ट, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना। 21वें नंबर पे आई है ये पाबंदी। ये पहले 20 स्टेप्स पूरे हुए होते हैं ना अकीदे के और जड़ों की सूरत में, तो फिर ये अगला काम होता है। और फिर नेक्स्ट, ज़कात अदा करना। नेक्स्ट, फ़र्ज़ और नफिल रोज़े रखना। नेक्स्ट, एतिकाफ़ करना। नेक्स्ट, खाना काबा का हज करना। नेक्स्ट, अल्लाह अज़्ज़ वजल की राह में जिहाद करना। नेक्स्ट, अल्लाह अज़्ज़ वजल की राह में मुराबता। मुराबता कुछ याद आया? इस बिरू वसा बिरू वराबितु करना। और मुराबता कहते हैं जब इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में आता है ना, तो साजो सामान लिखे और हथियार लेकर इस्लामी हुदूद की निगरानी करना। आपकी जुबान में साजो सामान क्या है? जूम का रूम, टेक्निकल, यूट्यूब, पासवर्ड, ये ABCD जो पहले हो रही होती है, और इस्लामी हुदूद की निगरानी, दीन की निगरानी। इस सारे सीखने सिखाने के मदद है। आप में से कोई कहना चाहिए कि कम कीमती? कभी कभी 2 लाख यूरो की गाड़ी नहीं चलती जब तक 10 यूरो का एक तार ना उसमें हो। फ्यूज एक लग जाता है, उतर जाता है तो चलते हैं। तो कोई अपने आप को कम ना समझे। कॉम्प्लेक्स आता है लोगों को कभी, हाय हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमारा तो छोटा सा काम है। भाई आप जरा हटके तो देखिए, एक पासवर्ड में बी की जगह सी डाल दे, बड़े बी की जगह छोटा डाल दे, खत्म होता है। तो आप पासवर्ड का वो एक छोटा सा एक डैश और एक हैश क्यों नहीं है? आपके बगैर ये दुआ किया करें हमारे ऊपर काम ना हो, और फिर वक्त पे आ भी जाए, पता चला तारे ही लेके चले गए, अब क्या होगा, ढूंढने फिरेंगे लोग आपको। तो जजाकल्ला खैर आपकी टेक्निकल टीम का, सारे 10 दिन के जो भी 11-12वां दिन है शायद, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने एक्सीलेंट किस्म की सर्विस दी, एक्सीलेंट दी, अल्हम्दुलिल्लाह। काम चलता जाता है, लोग चलते जाएंगे, रुकते जाएंगे, रोक लिए जाएंगे, हम में से कोई हमेशा नहीं रहेगा। देखिए तहरीकें कभी इंसानों के साथ मिटी नहीं है। वो वन मैन शो होते हैं जी, वो हमारी मस्जिद जो है वो उमरे पे गई है तो मस्जिद ही बंद है, हमारी मस्जिद हज पे गई है, हमारी मस्जिद आज बीमार हो गई है क्योंकि चाबियां जिनके पास है वो देते नहीं है, वो तो आज बीमार है। तहरीकें जो होती है ना, जो मूवमेंट्स होती हैं, वो लोगों के जाने या हटने रुकने से नहीं रुकती, क्योंकि वो अल्लाह के लिए होती हैं जो के अलबाकी है। बहरहाल आगे चलिए, 28 नंबर पे हम पहुंच गए। दुश्मन के सामने साबित कदम रहना और मैदान जंग से ना भागना। अब आप में से कई होंगे जाने का वक्त आ रहा है और उस वक्त ये बात हो गई। 29, माले गनीमत हासिल करने वालों को अपने इमाम या इसके नायब को माले गनीमत का 5वां हिस्सा अदा करना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आपको कुरान की आयत याद आई है कोई? पहली आयत 10वें पारे की, वालमु अन्नमा गनीमतुम। 5वां हिस्सा अल्लाह के नबी के लिए था और उनके घर वालों के लिए था। अब उसके बाद इमाम ये लिखते हैं कि जो उस वक्त का इमाम है, जो उस वक्त है, जब हम इन चीजों को तोड़ते हैं ना, तो तभी तो फिर आप देखिए बेचारे, हमारी मस्जिदों के हालात देख लीजिए और दीन वालों के मामला देख लीजिए। बहरहाल आगे चलिए, नंबर 30, अल्लाह अज़्ज़ व जल से तकर्रुब की खातिर गुलाम आजाद करना। कुर्ब पाते हैं ना, आज गुलामी नहीं है तो इसकी और बड़ी सूरतें। नेक्स्ट, जिनायात यानी जराइम पर वाजिब होने वाले कफारों की अदायगी की यानी जराइम पर वाजिब होने वाले कफारों की अदायगी। कितने हैं भला? किताब और सुन्नत में चार हैं। नंबर एक, कत्ल के बदले कत्ल, कत्ल का कफारा, ये उसी में आ रहा है सब कुछ। नंबर दो, जिहार का कफारा, ये आप पढ़ेंगे 28वें पारे में। कसम का कफारा, और माहे रमजान में रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी का कफारा। ये चार कफारे, इनको जिनायात कहते हैं, यानी ये किस्म का जुर्म है, ये वो हदूद नहीं है, अभी ये इंसानी मामलात की बातें हैं। फिर 32 नंबर है मामलात, यानी अहदो पैमान को पूरा करना। नेक्स्ट, अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमतों का शुमार और इस पर वाजिब शुक्र गुजारी। कभी आपने इस पे गौर किया कि ये भी एक ब्रांच है? 34 पे तो जरा से कान खोलें, स्काफ ढीले करें। गैर जरूरी लायानी चीजों से जुबान की हिफाजत करना। मुझे क्या और तुम्हें क्या, लिखिए। दिन ब दिन हमारी ये तरबियत होनी चाहिए कि हम किसी ऐसी बात के बारे में एक लफ्ज ना पूछें ना बताएं जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कौन, कैसे, कहाँ, क्या, कब, ये आमियाना अंदाज होता है। खास लोगों को इससे कोई दखल नहीं होता कि कौन, किधर, क्या, अब क्या होना है, आगे कल क्या हो रहा है। जो होगा सबको पता लग जाएगा। और कुरान पढ़े लोगों का ये मिजाज होना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा अगर दुख कभी जिंदगी में हुआ है या होगा आगे भी, तो मुझे इस पे होता है, जब कुरान पढ़े हुए लोगों को, वो चाहे अंसारुल्लाह के दर्जे पे हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे जिम्मेदारान हों, जब मुझे उनकी जुबान की किसी बात से तकलीफ हो। मेरे सामने तो कोई जुबान नहीं खोलता, आपस में बेयानी बातें करना, ला यानी बातें, बेतकल्लुफी में वो बातें कर देना कि जिससे इतने फैल जाएं और आपको उससे क्या मिला। याद रखिए, आम लोगों की बातें होती हैं। कौन थे, मिर्जा गालिब। तो उनके पास एक शख्स आया, कहने लगा आपके हमसाए ने खीर पकाई है। तो कहा फिर मुझे क्या? कहा नहीं, मुझे पता चला कि आपको भी भेजेगा। तो कहा फिर तुम्हें क्या? जिंदगी का असूल बना है, अगर काम करना है, और आप वेस्टर्न स्टाइल में जो मुहज्जब मुल्क है ना, उनको देखिए, आप उनके ऑफिस में जाकर निकल आ जाएं, जो काम करने वाले काम करते हैं वो आप नजर उठा के भी नहीं देखते। और हमारे यहाँ एक काउंटर पे बैठे तो दूसरा अपना काम छोड़ के आपकी बातें सुन रहा था। ये काम कल आपने अगर बढ़ाना है ना, तो आपको इसके ऊपर जिप द माउथ, जुबान बंद करिए। आपकी 100 नेकियां आपके एक जुमले से जाया हो जाएंगी कल अल्लाह के यहाँ। सारी रात जाके तहज्जुद पढ़ते रहेंगे, सुबह उठकर कोई एक जुमला ऐसा बोल देंगे, सारी जाया हो जाएगी। और आपको पता है कि आग इतना बड़ा ढेर होता है लकड़ियों का, माचिस की एक छोटी सी तीली उसको जलाती है, हमारी नेकियां इस तरह जल जाएंगी, क्या मिलेगा उस मिनट पे? आपने फरमाया कितने तहज्जुद गुजारे उनको थकन के सिवा कुछ नहीं मिलता, कितने रोजेदार है उनको रोजों की भूख के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो ये इल्म दिन ब दिन आपको अपनी जुबान पे, और दिल में नहीं होगा तो जुबान पे भी नहीं आएगा। मस्त बन जाइए अपनी बला से, किसी से मुझे क्या लगे। आप यहां से उठे, आप किधर गए, आपने घर जाके क्या पकाया, क्या खाया, क्या लगे मुझे इससे। तो लिहाजा जुबान की हिफाजत 34th ब्रांच ऑफ ईमान है। फिर अमानतों की हिफाजत, और इनको इनके मुस्तहकीन के पास पहुंचाना, यानी जो इसके हकदार हैं उनको अदा कर दीजिए, यानी जकात। ये भी एक रिमाइंडर होता है कि इंसान अपने आप को देखे कि क्या हकीकत में मेरे सर पे कोई जकात तो नहीं है, क्योंकि वो माल असल को भी खा जाएगा अगर जकात का माल आपके किसी दूसरे माल के अंदर आ गया। अमानतों की हिफाजत और इनके मुस्तहकीन को अदा करना। फिर किसी जान के कत्ल और इस पर जुल्म करने को हराम जानना। नेक्स्ट, शर्मगाहों की हिफाजत और इनमें लाजिम इफ्फत व इस्मत इख्तियार करना। इसके लिए तो मैं दिल खोल के मुंह भर के कह रही हूं कि टाइट पजामे लेना छोड़ दे बेटियों के भी और अपने भी। टखने ढक लीजिए अपनी बेटियों के भी और बहुओं के भी, इससे ज्यादा नहीं। मिन्नतें कर लें लोगों से, कहे कि अब हम कुरान के तारुफ के साथ जिंदा दुनिया में, तो खुदा के लिए हमें रुसवाई से बचाओ। मर्दों के टखने ढके और औरतों के खुले। जरा सोचिए तो सही, चेहरे पे तो कोई खूबसूरती हुई ना, आंख खूबसूरत, ये टखने जिसको आप गिट्टे बोलते हैं, ये गिट्टे को दिखाने वाली चीज है। कल उस पर मेकअप करेंगे, देखेगा लोग, टैटूज यही है बनाते हैं वो, हमारे भी बच्चे बनाएंगे। जिसने टांग नंगी करनी है वैक्स तो कराएगी ना वो बच्ची। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, तो आप क्या है खुशी का सामान बने, दूसरों के लिए आप मुश्किलों में पड़ते हैं। ये शर्मगाह की हिफाजत में नहीं आता, इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। अपने ड्रेस कोड को हम सब देखें, बाहर जाते वक्त हमारे हाल हुलिये कैसे हैं, अगर हमने हिजाब और निकाब के नाम पर भी कुछ किया है तो क्या उस पर भी कोई मोती सितारे तो नहीं लगे हुए। फिर नेक्स्ट देखिए, हराम अमवाल से हाथ रोक लेना, और इसमें चोरी, राहजनी, रिश्वतखोरी और शरण नाजायज माल खाने की हुरमत सब शामिल है। 39 नंबर, खाने पीने में एहतियात का वजूब और खाने पीने की नाजायज अशिया से इज्तनाब। अल्लाह अकबर। नेक्स्ट, हराम और मकरूह लिबास, वजाकता और हराम करदा बर्तनों से इज्तनाब करना, यानी इवॉइड करना हर उस खाने पीने के बर्तन से जिससे बू आए। आज देखिए, दिन ब दिन अमल बढ़ना चाहिए ना। ऐसे ग्लास जिसमें शराब पी जाती है, ऐसे बर्तन चमचे जिससे सोने चांदी की खुशबू आए, हटा दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा ज्यादा ज्यादा, उससे एक्स्ट्रा ही बहुत है माशाल्लाह बाजार में, वो ले लीजिए। नेक्स्ट लीजिए, 41 नंबर है, शरीयत इस्लामिया के मुखालिफ खेल कूद और तफरीही अशिया को हराम जानना। देखिए इनकी नजर कितनी बारीक है ना। नेक्स्ट, खर्च में मियाना रवि अपनाना और बातिल तरीके से माल खाने को हराम जानना। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक दे। नेक्स्ट है बुग़्ज़ और हसद से इज्तनाब। नेक्स्ट, लोगों की इज्जत और नामूस की हुरमत और इनमें ना पड़ने का वाजिब होना। और 45, अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए इखलास से अमल और रियाकारी से इज्तनाब। 46 नंबर है, नेकी पर मुसर्रत व शादमानी और गुनाह पर रंज व गम का एहसास। और 47 बहुत खूबसूरत है, तौबतुन नसूखा, हालिस तौबा से हर गुनाह का इलाज करना। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। 48, तकर्रुब इलाही के आमाल, यानी अल्लाह का कुर्ब पाने वाले आमाल, इजमाली तौर पर हदी, कुर्बानी और अकीका, इससे मुराद है यानी ये काम करना, वो काम जिससे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। नेक्स्ट बहुत अहम है, उलुल अमर की इतात करना। ये कौन होते हैं? मैनेजमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाना, आइमा, उमरा और हुक्काम की इतात आती है इसमें। 50th, जमात, ब्रैकेट लगा लें इर्द गिर्द या कॉमास, जमात के अकीदे और मनहज की पाबंदी करना। देखिए हमारा दीन डिसिप्लिन दीन है, मुंह उठाकर कोशिशें करने का नाम नहीं है। नेक्स्ट, लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला करना। 52 नंबर, भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना। और नेक्स्ट है नेकी और तकवा के कामों में बाहमी तआवुन। 54, शर्मो हया। 55, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक। नेक्स्ट, सिला रहमी, रिश्ते जोड़ना। नेक्स्ट, हुस्ने अखलाक। अब यहां हम पत्तों तक पहुंच गए हैं पूरे। अगर आप दरख्त को सोच रहे हैं ना, तो नीचे देखिए अकीदे की बातें थी, बीच में इबादत थी, अब हम मामलात पे आ गए, यानी ब्रांचेस बन गए आगे आके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गुलामों के साथ हुस्ने सलूक। आज इसको कैसे बदलें? मासियों के साथ हुस्ने सलूक। लस मासी के ऊपर समझ नहीं आती, मेट्स के साथ तुम बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, मासियां बेचारी पिसती हैं। नेक्स्ट देखिए, गुलामों पर इनके आकाओं के हकूक, यानी अगर आपने गुलामों के साथ अच्छा करना है तो गुलाम भी अपने आका के साथ अच्छा करें, यानी जिनका खाते हो उन्हीं को नुकसान ना दो। फिर नेक्स्ट है अहलो अयाल और बच्चों के हकूक की अदायगी, ये 60th नंबर पे आ रही है। 61, दीनदारों से कुर्बत, इनसे मोहब्बत और इनसे सलाम और मुसाफहा करना। 62 सुनकर हैरान होंगे आप, सलाम का जवाब देना। 63, बीमार की इयादत करना। 64, अहले क़िबला में से मरने वालों पर नमाज जनाजा की अदायगी। 65, छींकने वाले को जवाब देना, यानी इसके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में यरहमुकल्लाह कहना। R66 कुफार और फसादियों से दूरी अख्तियार करना और इनके साथ सख्ती का मुआमला करना। अब ये चीज़ें तो हमें अभी समझ ही नहीं आ सकती ना कि ये कैसे और वो कैसे, लेकिन जब पूरा ईमान और इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बात समझ आ जाती है। फिर नेक्स्ट, पड़ोसी की इज्जत करना, नेबर्स राइट। फिर मेहमान की इज्जत और तकरीम। फिर अगला तो बहुत ही प्यारा है, इतना प्यारा है, इसको भी जरा सा और केयरफुली सुने। गुनाहगारों की पर्दापोशी करना। अल्लाह हमें दूसरों के ऐबों को खोलने से बचाए और ऐसी चीज़ें जिससे हम अपने आप को और दूसरों को तकलीफ दें, अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। और फिर नेक्स्ट है मसाइब पर सब्र, और जिन लज्जतों और ख्वाहिशात की तरफ नफ्स का मीलान यानी रुझान इंक्लाइनेशन होता है, इससे रुक जाना। करेंगे ये, ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है। 71 है दुनिया से बेरग़बती और किल्लते आरज़ू। कभी किसी को देखा है, उसको परवाह ही नहीं है दुनिया की, है ही रग़बत कोई नहीं, आरज़ुओं की कली। वो कहते हैं ना अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि आरज़ुएं जिसकी कलील, मकासिद जिसके जलील, वो बंदे मोमिन है। और फिर नेक्स्ट है गैरत का मुजाहरा और बेजा नरमी से परहेज। ये तो बापों और भाइयों और शोहरों को सुनाने वाली बात है। लिबरल होते होते पता नहीं हम क्या हो गए, रुझान ही ना रहा, रिवाज ही ना रहा औलादों को रोकने और टोकने का। और मैं कहती हूँ बाप क्यों नहीं बोलते, माएँ तो चले को डरती होंगी, बाप क्यों नहीं बोलते, शौहर क्यों नहीं बोलते गलत चीज़ों पे। बेपर्दा बहू बेटी हो और बाप की सर न झुके। और यकीन कीजिए कि अगर बाप और बड़े और सुसर जब वो करे ये बात नोटिस करेंगे, बहू बेटियां सीधी हो जाती हैं। पहले दौर में ऐसे ही होता था, बुजुर्गों की इज्जत की वजह से कई बच्चियां और औरतें फिर पहले भी ऐसी होती थी लेकिन कुछ और अच्छी हो जाती थी। आज किधर गए बाप, वो इतने लिबरल है। तो ये लिख के रख ले, 72 नंबर की ये शाख है कि गैरत का मुजाहरा करना और बेजा नरमी से परहेज करना। फिर गलूफ से इज्तनाब और फिर सखावत और फैयाजी। अल्लाह हमें इसकी भी तौफीक दे। और 75 छोटे पर शफकत और बड़े का एहतराम करना। है ना इस्लामिक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। और फिर बाहमी इख्तलाफात की इसलाह करना, इसको भी लिख लें। दिल साफ रखिए, मिट्टी पाएं, क्या लेके फैल रहे हैं, दिल को डस्टबिन है आपका जिसमें गंद भरा हुआ है। और फिर 77 आदमी अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद करे जो खुद अपने लिए पसंद करता है, और इसके लिए इस चीज़ को नापसंद करे जिसे खुद अपने लिए नापसंद करता है। इसमें फिर रास्ते से तकलीफ दे चीज़ का हटाना भी शामिल है, जिसकी तरफ ईमान की शाखों वाली हदीस में इशारा किया गया। अल्लाह ताला आपको मुझे ईमान का एक सरसब्ज व शादाब दरख्त बना दे। यकीन कीजिए कि ये है इस्लाम की वो तालीमात जो खुले चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स पे दे दीजिए, आपको शर्मिंदगी कोई नहीं होगी। या मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारा इस्लाम अंदर से भी इतना खूबसूरत है कि किसी गैर मुस्लिम को, किसी मुतस्सिब को भी दिखा दें तो वो भी मान जाएगा। किसी के बारे में शायद आप ही सुबह सुना रही थी ना बात, कि बेटी को इस्लाम से रोकने के लिए बाप ने इस्लाम सीखना चाहा कि पढ़ूं जरा है क्या, तो खुद मुसलमान हो गया। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।